आर्य सिद्धांत के साथ उसके दोस्त के ऑफिस पहुंचा। वहां उन्होंने शिवी की लास्ट लोकेशन निकलवाई। उसकी लास्ट लोकेशन पहले हरिद्वार और उसके बाद उसे थोड़े आगे की थी। उसकी लोकेशन मिलने के बाद आर्य और सिद्धांत दोनों फ्लाइट से देहरादून पहुंचे। वहां से उन्होंने कैब ली और शिवी की आखिरी लोकेशन तक पहुंचे। वो वहां गए तब तक सुबह हो चुकी थी। वहां सुनसान इलाका था। दूर दूर तक वहां पेड़ पौधों के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। वरदान ने उसकी लास्ट लोकेशन यहीं की बताई थी। सिद्धांत ने ड्राइवर को गाड़ी रोकने का कहा। आर्य ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी से बाहर निकला। वहां से कुछ दूरी पर एक ढाबा था। मेन रोड होने की वजह से गाड़ियां आ जा रही थी, पर वहां कोई घर वगैरह नहीं बना हुआ था। वहां किसी को ना देखकर आर्य और परेशान हो गया। सिद्धांत उसके पास आया। उसने आर्य के कंधे पर हाथ रखकर कहा, वो जो भी है उनके पास शिवी के साथ साथ उसका मोबाइल भी हो सकता है। उन्होंने तुम्हें यहाँ से मैसेज करने के बाद फोन बंद कर दिया होगा। अब हम उसे कहाँ ढूंढे? मैंने अपने गुस्से के चलते उसे मुसीबत में डाल दिया, आर्य ने मायूसी से कहा। तुम खुद को ब्लेम नहीं कर सकते हो, ऐसी सिचुएशन में तो बिल्कुल नहीं। तुमने उसका पूरा ध्यान रखा, अपने साथ देहरादून लेकर गए। ये जो भी इंसान है वो बहुत शातिर है। सिद्धांत अपनी तरफ से आर्य को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था। जरूर इनके पीछे उस गौरव मलिक का ही हाथ होगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, आर्य ने गुस्से में कहा। क्या तुम पुलिस कंप्लेन करना चाहते हो? सिद्धांत ने पूछा। आर्य ने नामे सिर हिलाया और कहा, उसका कोई फायदा नहीं होगा, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। मैंने पुलिस कंप्लेंट की भी तो मेरी फैमिली परेशान हो जाएगी, और तुम गौरव मलिक को अच्छे से जानते हो, उस तक पहुंचना आसान नहीं है। मैं एक आदमी को जानता हूं जो वहां काम करता है, वो रेहान मलिक का असिस्टेंट है, तो इस वजह से काफी कुछ जानता भी है, वो हमारी हेल्प कर सकता है। सिद्धांत यहाँ मोहित की बात कर रहा था, उसी वजह से ही पिछली बार वो रेहान से मिल पाए थे। आई होप तब तक वो शिवी को कुछ करे ना, बोलते हुए आर्य वापस कैब में आ गया। डोंट वरी, वो उसे कुछ नहीं करेंगे, शिवी उनके बहुत काम आ सकती है, तुम्हें ब्लैकमेल करने में, शिव अंकल को ब्लैकमेल करने में, और यहाँ तक कि मिसेस वॉटसन को भी। हमें हियरिंग से पहले उसे ढूंढना होगा, सिद्धांत बोला। हाँ, क्योंकि उसके बाद वो उनके किसी काम की नहीं रहेगी, फिर वो उसे नुकसान पहुंचाने से नहीं चूकेंगे, आर्य ने जवाब दिया। वो दोनों वहां से वापस जाने के लिए निकल गए। रास्ते में सिद्धांत ने मोहित को कॉल किया तो उसे उससे पता चला कि गौरव मलिक और उसका खास आदमी शहर से बाहर है। इन दिनों उनके मेन ब्रांच के मालिक मिस्टर वॉटसन भी आए हुए थे। मिस्टर वॉटसन का इसमें क्या रोल हो सकता है? मोहित ने मुझे बताया कि उनकी मीटिंग्स होती रहती हैं। वो तो शिवी के स्टेप फादर हैं। अगर गौरव मलिक ने उसके साथ कुछ किया है तो उन्हें पता होगा। सिद्धांत के मन में काफी सारे सवाल उठ रहे थे, वो सब उसने आर्य के सामने रखे। तुम्हारे पास मिसेज वॉटसन के यहाँ के नंबर हैं, उन्हें कॉल करो और पूछो कि जिम वॉटसन कहाँ है, आर्य ने कहा। उसकी बात मानकर सिद्धांत ने तुरंत नंदिनी को कॉल किया। वो कुछ पूछ पाता उससे पहले नंदिनी की आवाज़ आई। मैं तुम्हारे ही कॉल का वेट कर रही थी। कैमरा चार्ज हुआ, कुछ पता चला उससे? नंदिनी की आवाज़ से उसकी एक्साइटमेंट साफ झलक रही थी। नहीं मिसेस वॉटसन, मैं किसी काम से बाहर आ गया था। एक्चुअली मुझे मिस्टर वॉटसन से बात करनी थी। क्या वो आपके पास है? सिद्धांत ने पूछा। नहीं, वो पिछले दो दिनों से बाहर ही हैं। किसी बिजनेस मीटिंग की वजह से आउट ऑफ स्टेशन गए हैं। लेकिन तुम्हें उनसे क्या काम है? नंदिनी ने पूछा। कुछ खास नहीं, मुझे उनकी कंपनी के बारे में कुछ डिटेल चाहिए थी, सिद्धांत ने बहाना बनाया। उसमें उनसे पूछने जैसा कुछ नहीं है, तुम मुझसे पूछ सकते हो, कंपनी का लगभग काम मैं ही देखती हूँ, नंदिनी ने जवाब दिया। फोन कॉल स्पीकर पर होने की वजह से आर्य भी उनकी बात सुन सकता था। आर्य ने जल्दी से अपने फोन के मैसेज बॉक्स में कुछ टाइप करके सिद्धांत की तरफ कर दिया। सिद्धांत ने उसे पढ़ते हुए कहा, अच्छा मिसेज वॉटसन, क्या लंदन और इंडियन ब्रांच अभी भी एक ही है? पिछले दिनों न्यूज आई थी कि दोनों ब्रांच अलग होने की बात चल रही है। तुमने ये न्यूज कहाँ से सुन ली? तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इंडियन ब्रांच भी जिम की ही है। बहुत पहले वो ब्रांच उसके फ्रेंड की हुआ करती थी, लेकिन उसके भाई ने उसे डुबो दिया। कंपनी आज वापस एस्टेब्लिश हो पाई है तो वो जिम की वजह से। उन्होंने बहुत पहले ही कंपनी को अपने अंडर ले लिया था, नंदिनी ने बताया। तो क्या गौरव मलिक उनके अंडर काम करता है? सिद्धांत ने पूछा। ऑफ कोर्स, जिम के बिना वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता, कोई भी छोटे से छोटा डिसीजन भी नहीं, यहाँ तक कि किसी एम्प्लॉय को जायर भी नहीं कर सकता। आजकल उसका काम उसका बेटा रेहान संभाल रहा है, वो थोड़ा काबिल है इसलिए जिम को इतना बर्डन नहीं उठाना पड़ता, नंदिनी ने उसे बातों बातों में बताया। थैंक यू सो मच मिसेज वॉटसन, मैं आपको कैमरा ऑन होने पर वापस कॉल करता हूँ, कहकर आए सिद्धांत ने कॉल कट कर दिया। फिर उसने आर्या की तरफ देखकर कहा, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मेरे मन में चल रहा है? हाँ, न जाने क्यों वाइब आ रही है कि इन सब से जिम वॉटसन भी जुड़ा हुआ है, आर्या ने जवाब दिया। अब उनके शक की सुई गौरव मलिक से जिम वॉटसन पर आ गई थी। आर्य और सिद्धांत वहां से देहरादून एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से मुंबई के लिए फ्लाइट ली। जिम अब तक महेश के घर पर ही था। महेश सुबह का नाश्ता देने के लिए शिवी के पास पहुंचा तो वो अब तक सो रही थी। रात को रोते रोते उसे नींद आ गई थी। महेश उसे सोते हुए देखकर बुरी तरह घूर रहा था। वो शिवी के पास गया और गले पर अपना हाथ फिराते हुए नीचे ले जाने लगा। तभी शिवी चौंक कर खड़ी हो गई। वो उसके इरादे समझ गई थी। हाउ डेयर यू, शिवी ने गुस्से में उसे जोर से दूर धकेल लिया। महेश पीछे एक टेबल के जा लगा। वो इस धक्के के लिए तैयार नहीं था, इसलिए हड़बड़ा गया। वो भी गुस्से में उठा और शिवी की कलाई पकड़ ली। तेरी तो, वो उसे खींचकर बिस्तर की तरफ ले जाने लगा। शिवी अपने बचाव में जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ मिस्टर वॉटसन। उसकी आंखों में आंसू थे। शिवी के चिल्लाने की आवाज सुनकर मिस्टर वॉटसन और रॉकी अंदर दौड़कर आए। जिम को वहां देखकर महेश ने जल्दी से शिवी का हाथ छोड़ दिया। जिम उसके पास आया और उसके मुंह पर एक पंच मारा। कहा था ना इससे दूर रहना। जिम गुस्से में बोला, मैं कुछ नहीं कर रहा था साहब, यही यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। महेश ने सारा इल्जाम शिवी पर लगा दिया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सो रही थी, उसने मुझे गलत तरीके से टच किया। प्लीज मुझे यहाँ से अपने साथ ले जाइए, मैं कुछ नहीं करूंगी जिससे आपको प्रॉब्लम हो, बोलते हुए शिवी रोने लगी। थोड़े ही टाइम में उसे समझ आ गया था कि वो महेश के साथ इस घर में नहीं तो वो उसके साथ कुछ ना कुछ जरूर कर देगा। मैं इसे भी अच्छे से जानता हूँ और तुझे भी, जिम ने महेश की तरफ देख कर कहा। फिर वो शिवी के पास गया और बोला, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, तुम्हें अपनी जिंदगी के बचे हुए 4 दिन यहीं बिताने होंगे। शिवी ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो हिचकियां लेते हुए रोने लगी। जिम ने इशारे से रॉकी से महेश को वहां से ले जाने के लिए कहा। उसका इशारा समझते हुए रॉकी महेश को वहां से ले गया। अब कमरे में सिर्फ शिवी और जिम ही बचे थे। जिम ने उसे देखकर गहरी सांस लेकर छोड़ी, रोना बंद करो, मैं तुम्हारी सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम करके जाऊंगा। मैं तुम्हारी मौत को टाल नहीं सकता क्योंकि तुमने खुद अपनी मौत को चुना है और आर्य की जिंदगी को। ये तो शुक्र मनाओ कि मैं तुम पर रहम कर रहा हूँ, तुम्हें इन सब से बचा रहा हूँ। अच्छी बच्ची बनकर रहना, बस 4 दिन की बात है। जिम ने उसके पास आकर उसके बालों को सहलाया और फिर वहां से चला गया।
बाहर आते ही उसने किसी को कॉल किया। कॉल पर बात करने के बाद वो महेश और रॉकी के पास गया। तब तक गौरव मलिक भी वहां आ चुका था। तुम्हें कितनी बार समझाया है, अपने कुत्तों को संभाल कर रखा करो, इधर उधर मुंह मारते फिरते हैं, जिम ने महेश की तरफ देखकर कहा। महेश ने अपनी नजरें घुमा ली। आपको अपनी सौतेली बेटी से इतनी हमदर्दी है तो उसे मार ही क्यों रहे हैं, गौरव ने हैरानी से कहा। उसे ये हजम नहीं हो रहा था कि जिम शिवी की इतनी केयर कर रहा था। मैंने उसके सामने बचने का ऑप्शन रखा था पर उसने अपने बॉयफ्रेंड को चुना। खैर, इस बारे में बात नहीं करते हैं, मुझे तुम्हें ये बताना है कि अपनी फ्लाइट की टिकट कैंसिल करवा दो, हम शाम को जाएंगे। मैंने एक आदमी और एक लड़की को यहाँ बुलाया है, जिम उसे अपने आगे के प्लान के बारे में बता रहा था कि तभी महेश बीच में बोला, इन सब की क्या ज़रूरत है, हम दोनों हैं उसका ध्यान रखने के लिए। आगे से मेरी बात बीच में काटने की हिम्मत मत करना, इतनी तुम्हारी औकात नहीं है, जिम ने उसकी तरफ घूर कर देखा और फिर आगे कहा। उसमें से जो लड़की होगी वो एनी टाइम शिवी पर निगरानी रखेगी और जो लड़का होगा वो महेश पर। 4 दिन बाद रॉकी तुम्हें उसे मारना होगा, मेरे कॉल के साथ ही तुम उसे ठिकाने लगा देना। उसे मारते हुए तुम एक वीडियो शूट करोगे और उसे मुझे भेजोगे। मरने के बाद उसकी लाश का अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए, उसका वीडियो भी मुझे चाहिए। लेकिन इन सब की क्या ज़रूरत है, एक तरफ तो आप उसकी इतनी फिक्र कर रहे हैं जबकि दूसरी तरफ, रॉकी ने हैरानी से पूछा। आखिर आर्या सिंह ओब्रॉय को पूरी तरह तोड़ना जो है, लंदन में उसकी कंपनी की जो वैल्यू है वो तुम्हें कभी समझ नहीं आएगी। मुझे उसे हासिल करने के लिए आर्या को तोड़ना ही होगा और इससे बेहतर तरीका नहीं मिल सकता, बोलते हुए जिम के चेहरे पर एक ईविल स्माइल थी। उसने काफी कुछ आगे का प्लान कर रखा था। गौरव मलिक को उसका प्लान समझ आ गया तो उसके चेहरे पर भी क्रूर मुस्कुराहट थी। जब तक जिम के बुलाए गए लड़का और लड़की आ नहीं गए तब तक वो लोग वहीं पर थे। शाम तक उनके पास से एक 35 साल का आदमी और एक 27 साल के करीब लड़की पहुंची। वो जिम के विश्वास पात्र थे। शिवी को उनके भरोसे छोड़कर जिम गौरव मलिक के साथ वहां से जा चुका था। सिद्धांत और आर्या भी वापस आ गए थे। वहां से आते ही सिद्धांत आर्या के साथ सबसे पहले कैमरे का चार्जर लेने गया। उन्होंने कैमरे को चार्ज किया। आई होप इसमें कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हम शिव अय्यर के साथ साथ शिवी को भी बचा सके, सिद्धांत उसे ऑन करने जा रहा था। हाँ, हमें मिसेस वॉटसन को सब बताना होगा, उन्हें भी जिम से खतरा हो सकता है, इसी के सहारे अब हम ये जंग जीत सकते हैं, आर्या बोला। सिद्धांत ने कैमरा ऑन कर लिया था। उसके ऑन होते ही उसके चेहरे पर एक चमक थी। आर्या के कहने पर उसने सबसे रीसेंट वीडियो निकाला। लास्ट वीडियो उसी दिन का था जिस दिन वो हादसा हुआ था। स्टार स्टार स्टार। जिम तक तो सिद्धांत और आर्या पहुंच ही जाएंगे, पर क्या इन सब में वो शिवी को बचा पाएंगे या नहीं? फ्री टाइम हो तो पॉकेट पर टाइड विद डेस्टिनी जरूर पढ़ना, आपको पसंद आएगी। आई होप यू विल सपोर्ट।